मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 5 अप्रैल 2018 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं राहुल राय, आप सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, अंशु सिंह मुगलसराय उत्तर प्रदेश से हैं, सौरभ कुमार पाल पटना बिहार से हैं और तेजिंदर सिंह पंजाब से हैं। तो राहुल, अंशु, सौरभ और तेजिंदर, आप चारों नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं न्यूज पर आऊं, एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा और वो सूचना यह है कि 2 दिन पहले YouTube पर एकेडमी ने मेरा एक प्रोग्राम डाला है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप इस साल के प्री एग्जाम में बैठ रहे हैं जो कुछ ही दिनों बाद होने वाली है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से अच्छे से अच्छे साइंटिफिक तरीके से पेपर को हल कर सकते हैं, यानी कि प्री के पेपर को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बारे में मैंने कुछ अपने और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स के अनुभव, जिनको मैं एक तरीके से सही मानता हूं, जो मुझे लगता है कि हाँ ये ज्यादा सटीक होंगे और आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक भी होंगे, ज्यादा फायदेमंद भी होंगे, उन सब को इकट्ठा करके अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि यदि संभव हो सके तो आप सब इस प्रोग्राम को जरूर देखें और खासकर जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए तो विशेष रूप से ये एक तरीके से कह लीजिए कि निर्देश ही है कि वो तो इसे देखें ही देखें, क्योंकि उन्हें मैं बता चुका हूं। मित्रों, आप लोगों को ध्यान होगा, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं उनको संबोधित करके मैं ये बात कह रहा हूं कि मैंने आप लोगों से बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि बहुत सी ऐसी बातें जो YouTube के माध्यम से ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, उन्हें अब मैं अपने क्लासेस से बाहर कर रहा हूं और आप लोगों के लिए अनिवार्य है कि वो सारे YouTube के प्रोग्राम आप देखें ही देखें, तो क्लास स्टूडेंट इसे जरूर देखें। आइए मित्रों, अब हम न्यूज एनालिसिस पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुख्य विषय के बारे में बताना चाहूंगा। आज का विषय किसी एक टॉपिक पर नहीं है, मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। आज मैं आपसे अर्थशास्त्र की समझ पर बात करूंगा, उसके लिए मैं आपको एक कोट दूंगा यानी कि एक कथन उद्धृत करूंगा और फिर उसको लेकर के थोड़ी सी बातें जो भी समय मुझे अलाउ करेगा आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, तो इससे आप जान पाएंगे कि सही मायने में इकोनॉमिक्स की तैयारी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से की कैसे जानी चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। खबरें आज काफी है, मुझे लगता है कि मुख्य विषय के लिए बहुत कम समय मिल पाएगा। मित्रों, न्यूज में आपने सुना कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2018, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। याद रखिए कि इसे केवल कैबिनेट ने मंजूरी दी है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, राइट। अभी यह जाना है, अभी पार्लियामेंट में यह जाएगा और पारित होगा, तब जाकर के ये मान्य होगा। लेकिन एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि पाएंगे कि मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसको अक्सर नख दंत विहीन कहा जाता है, कि जिसके पास अपने अधिकार कुछ भी नहीं है। अभी खुलासा नहीं हुआ है कि संशोधन में कौन कौन सी बातें लाई गई हैं, लेकिन अभी ये दूर की बात है, अभी तो पार्लियामेंट में आएगा, फिर उस पर बहस होगी, फिर वो पारित होगा, तो उस समय आपको ढेर सारी बातें जानने को मिलेंगी। फिलहाल मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर आपकी निगाह होनी चाहिए, रहनी चाहिए। दूसरी जो खबर है मित्रों, वो यह है कि प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में आपने न्यूज में सुना होगा। एक कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। अभी तक इसमें एक अध्यक्ष होते थे, अध्यक्ष तो होते ही, और 6 सदस्य होते थे। अब इनकी संख्या घटा करके 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य की जा रही है, गवर्नमेंट ने यह घोषणा की है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि याद रखिए कि यह एक स्टेचुरी बॉडी है, यानी कि यह एक बेसिकली सांविधिक संस्था है, यानी कि एक्ट के जरिए इसका गठन किया गया है, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, राइट। भारत सरकार एक एक्ट लेकर के आई थी 2002 में, कंपटीशन एक्ट, प्रतिस्पर्धा नियम लेकर के, विनियमन लेकर के आई थी 2002 में, और उस एक्ट की निगरानी के लिए वो ठीक तरीके से एक्ट लागू हो सके इस उद्देश्य से फिर सरकार ने 2003 में इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, राइट। मित्रों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका काम क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में आप देखते हैं कि प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, कंपटीशन होते रहते हैं। कंपटीशन तो चलिए अगर स्वस्थ हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है, उससे चीजों की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, कीमतें भी कम होती हैं, फिर लोग अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी भी डेवलप करते रहते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने क्लास में चर्चा की है, आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। तो प्रतिस्पर्धा तो बहुत अच्छी बात है और अभी लिबरलाइजेशन इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी करती है प्रतिस्पर्धा को, लेकिन होता क्या है कि इस प्रतिस्पर्धा का कुछ लोग नाजायज फायदा उठाने लगते हैं, नाजायज फायदा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो जाएगा, लोग अपने में गुट बना लेंगे, फिर कीमतें बढ़ा देंगे आपस में समझौता करके। तो इस तरह के प्रतिस्पर्धा में जो अनुचित व्यवहार होते हैं, आप कह लीजिए वो अनुचित व्यवहार अपनाकर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो उद्योगपति हैं, ये अनुचित फायदा न उठा सके तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए फिर इस आयोग का गठन किया गया है। तो ये इसका एक उद्देश्य हुआ। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था उसको इन्फोर्स करना, उसको लागू करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। और वैसे छोटे छोटे उद्देश्य आपको और भी जानने को मिल जाएंगे। फिलहाल मैं इतना जरूर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार इसे आप पलटकर थोड़ा सा सामान्य से रूप में देख लें। तीसरी जो खबर है मित्रों वो है भारत, जापान, अमेरिका, इन तीन देशों की अभी बातचीत होनी है। और आपने न्यूज में सुना कि भारत प्रशांत क्षेत्र, मित्रों इंटरनेशनल रिलेशन का मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। और मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि इस पर अभी जो आपका मेन सोना है उस प्रश्न उसमें पूछा भी जाए। सच पूछे तो अगर इस पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो फिर अब वैसा तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अफसोस होगा कि इस पर प्रश्न क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही हॉट अभी बर्निंग टॉपिक है। भारत, जापान, अमेरिका के बीच जो बातचीत हो रही है और ये भारत प्रशांत जो क्षेत्र है उसको लेकर के बातचीत हो रही है, राइट। बातचीत जब हो जाएगी तो डेफिनेटली इस पर कुछ आर्टिकल्स, एडिटोरियल कमेंट आएंगे, तब हम लोग इस पर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मित्रों, आपने अजरबैजान का नाम सुना होगा, और अगर आपने डीडी न्यूज देखा हो तो उसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हैं वो जब अपनी बात रख रही थी तो उसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था अजरबैजान। पहली बात तो याद रखिए कि ये गुट निरपेक्ष देशों का बड़ा सम्मेलन नहीं, फुल फ्लेज्ड सम्मेलन नहीं है, ये मिड टर्म सम्मेलन है, यानी कि बीच का मध्यावधि सम्मेलन है, और ये मिनिस्टर्स लेवल का सम्मेलन है, मंत्री स्तर का ये सम्मेलन है, है ना। अदरवाइज उसमें राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, जो बड़ा सम्मेलन होता है जो बहुत चर्चित होता है राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का, जिसे हम नॉन एलाइन मूवमेंट कहते हैं। जो अजरबैजान है मित्रों, इससे पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा था, जब सोवियत संघ टूटा तो 1991 में अजरबैजान भी उससे स्वतंत्र हुआ है, 1991 में। मध्य एशिया के जब ऊपर आप यूं कह लीजिए कि एशिया और यूरोप के बीच ये लिंक जैसा ये देश है, अब नक्शे में आप चाहें तो देख सकते हैं, बल्कि चाहें क्या, मतलब देख ही लेना चाहिए, तो आपको इस आपकी इस अजरबैजान के एक तरफ आपको कैस्पियन सागर मिलेगा, एक तरफ जॉर्जिया मिलेगा, और एक तरफ आपको ईरान भी मिल जाएगा, एक तरफ आर्मेनिया मिल जाएगा। तो अच्छी है, आपको चार पांच देशों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो लोकेशन आपको पता लग जाएगा। आबादी इसकी बहुत कम है, कल्पना करके देखिए कि 1 करोड़ के आसपास, छोटा सा देश है लेकिन बहुत प्यारा देश है। मित्रों, अगली जो बात है वो है कि शेयर मार्केट में गिरावट काफी हुई है, और उसका कारण है कि एक तरह से अमेरिका और चीन के बीच में जबरदस्त किस्म के ट्रेड वार की शुरुआत हो गई है। मैंने सोचा था कि आज मैं मुख्य विषय के तहत इसी की चर्चा करूं, लेकिन फिलहाल इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। यदि कोई दूसरा महत्वपूर्ण विषय कल इससे अधिक नहीं हुआ तो फिर हो सका तो मैं इस विषय की चर्चा, मुख्य विषय के अंतर्गत इस टॉपिक पर कल आपसे बात करूंगा। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, अर्थशास्त्र की समझ। मित्रों, खासकर मैं अपने क्लास स्टूडेंट को स्पेशली यहां पहले एड्रेस करना चाहूंगा कि अब आपको जो क्लास में बताया गया था पूरी की पूरी आर्थिक स्थितियों का, किस तरह से जो इकोनॉमिक सिस्टम है काम करता है, इसके बारे में मित्रों मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है, तो प्लीज उसे याद करने की कोशिश कीजिए। और याद करने के बाद अब मैं जो वाक्य बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल अर्थव्यवस्था की जो समझ होती है, या यूं कह लीजिए कि अर्थशास्त्र की समझ की मैं बात करूं, तो वो इसी तरीके से बनती है कि आप कोई वाक्य पढ़ते हैं और फिर उस वाक्य की व्याख्या खुद करते हैं। देखिए, आप वाक्य पढ़ेंगे, हिंदी में है या अंग्रेजी में है, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश का वाक्य समझ में आ जाएगा, मीडियम हिंदी है तो हिंदी का वाक्य समझ में आ जाएगा। कोई एकाध शब्द का अर्थ नहीं समझ में आएगा तो आप डिक्शनरी कंसल्ट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। बात बनती है उसकी व्याख्या से, यानी कि भावार्थ आप समझिए। एक वाक्य बोला गया और पता लगा कि उस एक वाक्य को समझाने में आप 50 वाक्य बोल रहे हैं, तब आप मान करके चलिए कि आपको अर्थव्यवस्था की समझ पैदा हो गई है। मित्रों, कल मैंने आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था, आपको ध्यान होगा, सब पर भारी पड़ेगी कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमत। यह एडिटोरियल कमेंट मैंने कल आप लोगों को दिया था, चाहे तो आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं, बेहतर होगा कि आप उसे कंसल्ट कीजिए। उस एडिटोरियल के लास्ट में कंक्लूजन के रूप में देखिए क्या वाक्य कहा गया है, बस वही वाक्य मैं भी आपके सामने रख रहा हूं। मुक्त अगर तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो न सिर्फ व्यापार घाटा बढ़ेगा बल्कि काबू में आ चुकी महंगाई भी बढ़ेगी और जीडीपी गिरेगा। राइट, एडिटोरियल कमेंट के शुरू में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 2016-17 में जो तेल 47.68 डॉलर प्रति बैरल था वो अब बढ़कर के 63.80 डॉलर प्रति बैरल हो गया, यानी कि कमोवेश डेढ़ गुना दाम तेल के हो गए हैं। और आपको मालूम है कि भारत अपने तेल की जरूरतों का 80% इंपोर्ट करता है, यानी कि अब हमें तेल पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इसका इंपैक्ट भारत पर क्या होगा? देखिए, जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो भारत के संदर्भ में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब हम इंपैक्ट की बात करते हैं तो देखिए तीन इंपैक्ट इसमें बताए हैं। जब आप किसी भी चीज को बहुत जल्दबाजी में पड़ जाते हैं, जल्दबाजी में आप निपटाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर पाते, उसको तोड़ तोड़ कर नहीं देख पाते, जबकि आपको चाहिए कि आप उसे तोड़ तोड़ कर देखें। तो जब आप इसे तोड़ करके देखेंगे तो आपके सामने वो तीन तथ्य रख रहा है, तीन तरह के इंपैक्ट बता रहा है एक ही वाक्य में। मैं पढ़ रहा हूं फिर से, अगर तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो न सिर्फ व्यापार घाटा बढ़ेगा, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि व्यापार घाटा बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट वो कह रहे हैं बल्कि काबू में आ चुकी महंगाई भी बढ़ेगी, यानी कि अभी तो हमने इन्फ्लेशन पर या महंगाई पर नियंत्रण पा लिया है, काबू में आ चुकी है, लेकिन अब ये बढ़ जाएगी, बेकाबू हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई का बढ़ना सेकेंड पॉइंट हुआ। और तीसरा दे रहे जीडीपी गिरेगा, यानी कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कुल जो राष्ट्रीय उत्पाद है, घरेलू उत्पाद है, कुल घरेलू उत्पाद, वो गिर जाएगा। तीन पॉइंट हो गए, व्यापार घाटा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और जीडीपी गिरेगा, तीन पॉइंट मिले। अब मित्रों, आपको चाहिए यह कि आप इन तीनों पॉइंट को अब इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि भैया जब तेल की कीमत बढ़ जाएगी या बढ़ गई है तो ये तीनों होंगे कैसे? पढ़ने के लिए आपने पढ़ लिया, रट भी लिया, आप एग्जाम में भी लिख करके आ जाएंगे, बात भी हो सकता है कि बन जाए, अब किस तरह का प्रश्न पूछा गया है डिपेंड इस बात पर करेगा, लेकिन आपकी सिविल सर्विस की जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हुई है। मित्रों, अभी वक्त तो मेरे पास इतना नहीं है कि मैं इसकी व्याख्या कर सकूं, बता सकूं, लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसे समझने की कोशिश करें कि तेल की कीमतों के बढ़ने से कैसे ये तीनों घटनाएं भारतीय बाजार में होंगी, भारतीय अर्थव्यवस्था में होंगी, उनका कैसे इस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। ये आप इसे होमवर्क ही समझ लीजिए और इस पर थोड़ी सी माथापच्ची कीजिए। अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा देर का काम होगा। और इसमें खासकर मेरे जो एर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं, स्पेशली उनसे मैं कहूंगा कि वो इसकी उपेक्षा बिल्कुल न करें, इस पर वो आज काम करें ही करें। राइट, तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। न्यूज़पेपर्स के मित्रों, आज मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें तीन क्लिपिंग्स का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लिपिंग है इकोनॉमिक टाइम्स का फ्रेंड्स, ये है बैनिश द मेल न्यूट्रिस्ट इंडिया, मतलब किस तरह से हम कुपोषण से मुक्ति पाएं, इंग्लिश में है ये। एक है दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, दक्षिण को आबादी घटाने की सजा मिलेगी, शशि थरूर जी का लेख है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर उन्होंने लेख लिखा है और शशि थरूर जी तो लिखते बहुत अच्छा है आप जानते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, द नेशनल टूरिज्म बिल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है। तो इन तीन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी आप अपने हिसाब से अपने लिए चयन कर सकते हैं। मित्रों, अब अंत में मैं आता हूं आज के ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसमें एक मेल मुझे मिला है राजा राम का, पलवल जो हरियाणा से हैं और हमारे एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं। राजा राम, आपको जो सफलता मिली है उसके लिए मैं आपको अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह से सफलता के जो पायदान है वो चढ़ते चले जाएं। ईमेल लिखने वाले में कुछ दोस्तों के नाम हैं, राजेंद्र झा राजा खेड़ा राजस्थान से, कुमार गौरव मुजफ्फरपुर बिहार से, तनु प्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, धीरज दुबई से और प्रतीक सिंह थाने महाराष्ट्र से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।